शांति। द आर्ट ऑफ लविंग में हमको टॉपिक मिला था भगवान से प्यार कैसे करें। तो पहले तो हम प्यार देखेंगे कि प्यार कितने प्रकार के होते हैं। तो तीन प्रकार के प्यार निकाले हैं, जिसमें पहला है जो प्यार किसी को देख के आकर्षण से हो, पहला। दूसरा है जो वस्तु वैभव साधनों से कुछ प्राप्ति हो तो उससे भी प्यार हो जाता है। और तीसरा है दिव्य प्यार। तो जो पहला है आकर्षण, जो सबसे ज्यादा प्रचलित है, अभी बाहर भी है और इधर भी है, जो दूसरे को देख के आकर्षित हों, देह को देख के, चमड़ी को देख के आकर्षित लड्डू हो जाते हैं ना, बाबा कहते हैं नाम रूप में लटक के लट्टू हो जाते हैं। तो दूसरे को देख के आकर्षित होना, तो भाई जी ने कितनी, जगदीश भाई जी ने लिखी है कि आठ प्रकार के देह से आकर्षण हो जाते हैं, आठ नाम रूप में फंस जाते हैं, नाम रूप, स्पर्श, इच्छाएं जागृत हो जाती हैं, तृष्णाएं हो जाती हैं। और जितने भी आजकल कैदी हैं, ज्यादातर किस में, नाम देह के चक्कर में तो चले गए जेल में, सजाएं काट रहे हैं, तो उसकी तो लंबी लिस्ट है बाहर, तो उसमें तो ज्यादा डिस्कस करना नहीं है अपन को। लेकिन प्रेम का एक वो भी है कि लोग उसी को प्रेम समझते हैं, क्योंकि इतने दुखी, आसान, परेशान हो गए हैं कि जो माँ बाप बच्चों को अपने कलेजे का टुकड़ा समझ के उनको पालते हैं, और वो ही लास्ट में भाग जाते हैं, एक दूसरे के नाम रूप में फंस के भाग जाते हैं। तो ये तो बाहर की बात है, बाहर तो बहुत सारी चीजें होती हैं। दूसरा है कि साधनों से भी लगाव हो जाता है। कभी कोई, हमने देखा था एक नई गाड़ी लाए, अच्छा मर्सिडीज लाई गाड़ी, अब उसमें थोड़ा सा स्क्रैच लग गया तो हालत खराब हो गई उनकी, थोड़ा सा स्क्रैच लग गया हालत गंभीर हो गई, मतलब जिस व्यक्ति तक उधर मायने नहीं रखता, खुद का बच्चे ने उसको स्क्रैच कर दिया तो गाड़ी का उतना मूल्य नहीं है, लेकिन अपने बच्चे को इतना पीटा उन्होंने कि क्या बताएं। तो साधनों में भी कभी कभी जो लोगों से प्रेम होना चाहिए वो नहीं होता, लेकिन साधनों से ज्यादा अटैच हो जाता है व्यक्ति। अब कोई ज्यादा नहीं, एक सिंपल चीज है कि देह का भी उतना आजकल लोग केयर नहीं करते। एक मोबाइल लेंगे 10,000 का होगा, 20,000 का होगा, 50,000 का होगा, लेकिन तुरंत ही उसमें कवर डलाएंगे, टच गार्ड डलाएंगे, ताकि कोई डिफेक्ट ना आए। लेकिन व्यक्ति इतना इंटेलिजेंट हो गया है आजकल कि उसको खुद नहीं पता है कि इंटेलिजेंट हो गया कि भ्रष्ट हो गई है बुद्धि। गाड़ी लेगा, एक गाड़ी, उसको गाड़ी जबकि केरोसिन से भी चल सकती है, लेकिन उसको इतना इंजन का ख्याल रहता है कि उसको पेट्रोल ही डालना है। लेकिन जो अमूल्य इतना शरीर है या जीवन है या विचार है, उसको चेक नहीं करेगा कि इसमें क्या डाल रहा है, कुछ भी खा लेगा, कुछ भी कर लेगा, ध्यान नहीं देगा। मतलब वस्तुओं की केयर इतनी खुद से भी ज्यादा करने लगता है, और इसमें कुछ भी डालता रहेगा, कीचड़ पट्टी, सिनेमा देखेगा, बहुत सारी चीजें करेंगे, जिससे किचड़ा ही बढ़ना है, ना कि उन्नति होनी है। तो मतलब ये है कि कहीं ना कहीं समझ की कमी हो जाती है वस्तुओं के आकर्षण से। तो ये है दूसरा वस्तु। वैसे तो हर चीज की लंबी लिस्ट है, चाहे दुनिया के आकर्षण का हो, सिनेमा का हो, बहुत सारी चीजों की लंबी लिस्ट है, उस पर तो जाना नहीं है क्योंकि समय भी कम है। तो अभी जो मेन हमको टॉपिक मिला है उस पर बात करेंगे कि दिव्य प्रेम क्या है, वो ही सबसे बड़ा प्रेम है। दिव्य प्रेम कहो, आत्मिक प्रेम कहो, आत्मा परमात्मा का प्रेम कहो, और जिसकी प्यास आत्मा हर एक आत्मा को है। कोई भटक रहा है इसलिए शरीरों पर लटक रहा है, बाहर भटक रहे हैं, बहुत भटक रहे हैं, खबर नहीं होती कि वास्तविक प्रेम क्या है। प्रेम का तो विकृत रूप हो गया आजकल के जमाने में, लव को लस्ट में परिवर्तन कर दिया है। इतने लोग, बाबा ने कहा था ना उस दिन कि दिमाग वाले क्या कम आते हैं, 5 तारीख की मुरली में कहा था बाबा ने, वरदान में, दिमाग वाले क्या कम आते हैं, नाम कम आते हैं, और दिल वाले आज भी कहा बाबा ने, अंधों की लाठी बनना है। कौन बन सकता है अंधों की लाठी? जो खुद अंधे ना हो, जो खुद अंधे हुए होंगे वो क्या दूसरों को अंधे की लाठी बनेंगे? जो गाय दूध नहीं देती तो उसको कहां भेज देते हैं? आज की मुरली में बाबा ने कहा ना, जो गाय दूध नहीं देती है, जो धारणा कर दूसरों को नहीं सुना सकते, तो उनका हाल क्या होगा? वो कहां, कौन से पंजरपुर में जाएंगे? हमारे इधर जो गाय या बछड़ा होता था, मतलब दूध नहीं देता था ना, तो उसको कसाई को बेच देते थे, और वो कसाई खाने में चले जाके, तो यहाँ क्या होगा, कौन सा कसाई काटेगा? अगर ज्ञान दान नहीं करके सुनाएंगे लोगों को तो बाबा ने तो बहुत सारी चीजें हैं बताई हैं कि जो धारण नहीं करेंगे तो उनको कहाँ से गुजरना पड़ेगा। हाँ, धर्मराजपुरी से। और जो धारण करके दूसरों को सुनाएंगे तो उनको मुक्ति मिल जाएगी, धर्मराजपुरी में नहीं जाना पड़ेगा। जब हमको पता है, जब हम छोटे थे ना तो मम्मी ने बहुत मार, स्कूल नहीं जाते थे ना तो बहुत पिटाई करके स्कूल पहुंचाते थे, और डेली क्या, हम तो होमवर्क बस मिल जाए स्कूल में तो हम तो साल भर नहीं गए थे, गए ही नहीं, इस बहुत होमवर्क करके नहीं गए ना तो बहुत पिटाई पड़ी थी। तो मम्मी मार पिटाई करके बहुत भेजती थी। तो हम एक दिन बाबा के सामने बैठ गए, बाबा बहुत कष्ट है, ये माता जी को आपने कैसा ज्ञान दिया है, बिल्कुल रहम नहीं करती हैं, रहम ही नहीं करती है हमारे ऊपर, इतना मारती हैं, आपने कैसा किया? और तुम क्या, तो सबका बाप हूं मैं, अब इनके भी तो आप बाप हो, तो हमारे दादा हुए, समझाओ इनको, बहुत मारती हैं। तो एक दिन अचानक आए कि मुरली में, जैसे मुरली तो हम सुनने नहीं जाते थे, सेंटर में माता जी जबरदस्ती भेज देती थी, कहीं सब्जी ले जाओ, ये ले जाओ, वो ले जाओ, तो मुरली, और हम भी जाते थे तो जब मुरली चलती रहती थी अंदर ना, तो दीदी सुनाते रहते थे, हम बाहर खड़े रहते थे, कब मीठे मीठे बच्चे हो फिर हम जाएंगे, मीठे बच्चे के बाद मुरली में कोई इंटरेस्ट नहीं, हम तो जाते थे कि टोली मिलेगी, खासकर बुधवार को जाते थे ताकि बहन जी ना समझे कि टोली खाने आ गया, बुधवार को जाएंगे तो गुरुवार को भी चले जाते हैं, फिर तो बहन जी समझ जाती। तो उसमें एक शब्द आया लास्ट में कि बच्चे तुमको सजा खा के, देखो दोनों चीजें हैं, एक तो जाना तो है, तुम तो पकड़ गए हो, ज्ञान में तो पकड़ ही गए हो, अब भाग भी नहीं सकते तुम इधर से, जाना तो है तुमको, चाहे सजा खा के जाओ चाहे मौज करके जाओ। तो ये बात दिमाग में बैठ गई कि स्कूल तो जाना पड़ेगा, चाहे पिट के जाओ चाहे ऐसे जाओ, क्यों ना अपनी मर्जी से चले जाए। पिट के जाते हैं तो उधर बदनामी होती, देखते हैं दे वो रो रहा है, पिट पिट के आता है, अपनी मर्जी से नहीं आता है। तो हमने कहा कि स्कूल तो जाना ही है, तो पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट नहीं था, तो बाबा के पास फिर गए कि बाबा देखो स्कूल तो हम जाते हैं, अब करें क्या? क्योंकि पढ़ाई शुरू से स्कूल में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, तो कोई दोस्त और कभी बोलते नहीं थे ज्यादा, मतलब लास्ट में कोने में बैठ जाना, टीचर की नजर ना पड़े ताकि होमवर्क नहीं मिलेगा या पूछेंगे नहीं। होमवर्क से तो इतना डर के एक बार होमवर्क मिल जाए तो एक साल बाद जाते थे, पेपर देने जाते थे। और पेपर में क्या करते थे, चार ऑप्शन आते ना, हाँ बाप मेरा बाबा कौन सा है, ये टिक कर दिया मेरा बाबा, जहां आया बाबा टिक कर दिया। अब फिर ये भी दुविधा थी उसमें कि हर बार बाबा वहीं आएगा चौथे ऑप्शन में। अब मैंने कहा कि मंत्र चेंज करो, अब कहा ओम शांति, तो अब ओम शांति जहां आया तो पता चला तीसरे नंबर पे आया। अरे अब ये भी दुविधा है, एक से कैसे हो सकते हैं, बदल बदल के आना चाहिए, तो हम भी बदलते जाते थे। फिर कहा कि ओम शांति, ओ माना एक ऑप्शन हो गया, एम में दूसरे में, तो ऐसा बदलते जाते थे। पहले ओम बस बोले तो दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, ऐसे ही करते थे, मेरा बाबा ओम शांति जो याद आया, क्योंकि छोटे थे तो इतने सारे शब्द याद नहीं रहते थे। लेकिन ये भी बाद में जब ज्ञान थोड़ा समझ में आया तो ये भी लगा कि ये भी प्रेम था। तो बाबा कहता है ना कि कोई ऐसा थोड़ी होगा, भाई जी भी कितने एग्जाम्पल देते हैं कि बाबा उनको देता है जो मेहनत करते हैं। अब हम तो स्कूल न जाते थे न कुछ मेहनत करते थे तो कैसे पास होंगे, तो क्या मिला, 10-5 अंक मिल जाते थे, मतलब जब तक बोर्ड नहीं था तो पास हो जाते थे। तो ये लगा कि बाबा पास कर रहा है, बोर्ड क्लास नहीं थी, छठवीं सातवीं तो वैसे पास कर देते थे, प्राइवेट स्कूल था, उनको अपनी स्कूल की रेपुटेशन तो गिरानी नहीं है ना कि लोग फेल करें, तो वो पास कर देते। जैसे ही बोर्ड क्लास आया 8 क्लास, अब क्या है, आदत तो पड़ गई ना, जो आदत हो गई मजबूत, जो आदत हो गई पक्की, उसका छूटना मुश्किल, धागों से बना रस्सा जिसका टूटना मुश्किल। तो आदत कौन सी पड़ गई थी, एग्जाम कौन सा देने की, बाबा मेरा बाबा, और इंग्लिश तो आती नहीं थी शुरू से, तो क्या करते थे, अनसीन पैसेज आते ना जो, तो वही कॉपी पेस्ट कर देते थे। और क्या है वाट से शुरू होता है, वाट वाय हाउ, इससे क्वेश्चन शुरू होता है, तो हम दा से शुरू करते थे, लिख देते थे पूरा क्वेश्चन, आंसर में दा से शुरू करते थे, लिख देते थे पूरा क्वेश्चन। और पेप अब एक लाइन का तो आंसर नहीं होगा, तो अब दूसरा देखते थे, अनसीन पैसेज पूरा उतार देते थे, शुरू दा से करते थे और पूरा उतार देते थे। तो ऐसा करते करते पास भी कर देते थे, क्योंकि कॉपी भरी है। और तो ये लगता था कि बाबा कोई तो चमत्कार हो रहा है मेरे साथ, बाबा पास कैसे हो रहा हूं मैं। तो बोर्ड क्लास में भी ये टेक्निक अपनाई, लेकिन हर जगह फार्मूला काम नहीं करता, फेल हो गए। तो मैंने कहा जी क्या हुआ, तो फिर क्या, प्राइवेट स्कूल था, माता आर्थिक स्थिति उतनी वो नहीं थी, संपन्न नहीं थी, तो बोला फेल हो गया तो अब तो दोबारा इस स्कूल में नहीं पढ़ सकते। मैंने भी सोचा कि अब नहीं पढ़ूंगा, देखो जब करना हमको कुछ काम ही है, जब है ही पैसे कमाने ही है, तो हम तो मजदूरी करके भी कमा लेंगे। तो माता जी ज्ञान में होने के कारण बहुत, पिताजी नहीं थे तो संघर्ष बहुत था उनका, और बहन जी भी उनको समझाते रहते थे ना ये बच्चों को पढ़ाना बहुत जरूरी, चाहे कैसे भी पढ़ा। तो हम तो सोच लिए थे कि हम नहीं पढ़ना है, क्योंकि मन भी तो नहीं लगता था। और बाबा ने कहा था ना 13 नवंबर की मुरली में, गांव के बच्चों को बोल दो घास काटने तो घास काटने चले जाएंगे, लेकिन पढ़ाई करने बोलो तो नहीं पढ़ेंगे। 13 नवंबर को भी बोला था बाबा ने, 19 नवंबर को भी, ये बात बहुत जल्दी रिपीट की है 7 दिन के अंदर, नहीं तो हर मुरली 5 साल के बाद रिपीट होती है, 5 साल के बाद, 5 सालों के बाद रिपीट होती ना मुरली, तो वो 7 दिन के बाद रिपीट हो गई, अभी की बात है, अभी नवंबर 2019 में। तो बाबा जो कहता है उसके पीछे कोई ना कोई रास्ता रहता है, कि ज्ञान का गा नहीं आता है, ऐसे सब सेंटरों पे बच्चे हैं, तो किसको कह रहा बाबा, ज्ञान का गा नहीं आता। कितनी गहरी बात है कि कितने साल से ज्ञान में चल रहा है और बाबा कह देता है ज्ञान का गा नहीं आता, वो घास काटने बोल दो तो चले जाएंगे। मतलब बाबा कह रहा है कि सेवा करने में तो बहुत मजा आता है, लेकिन योग और ज्ञान मुरली पढ़ने में बोल दो तो मन नहीं लगेगा। बाबा मिलन किए 15 नवंबर को, और जाके बैठा था मैं, ऐसा ही सोच रहा था कि बाबा ने क्या क्या बोला। तब रूम में ऋषि भवन के बाहर ही बैठा था, और लोग आ रहे थे तो कई लोग बात करते हुए आ रहे थे कि आज बाबा मिलन हो गया, टेंशन फ्री हो गए। बहुत टेंशन रहता है बाबा मिलन का, बाबा मिलन हो जाए बस खीर रगड़ के खा ले, क्योंकि बाबा मिलन में ही मिलती है खीर। चर्चा करते हुए आ रहे थे दो चार लोग हमारे जो साथ के थे, वही लोग आ रहे थे चर्चा करते कि तुमने कितने गिलास खाए। वो बोलता है 2 गिलास, तुमने 3 गिलास। अरे एक बार खीर मिलती है, साल में एक बार आते हैं, 5-6 गिलास तो खानी चाहिए। और 2-2 गिलास पकड़े भी थे हाथ में, 2-2 गिलास हाथ में भी लिए थे। अब 4 हाथ तो नहीं थे, देवी देवता तो इधर ही बन जाते नहीं, 8 गिलास भी हो जाते। बाबा ने कहा ना 10-10 हाथ दिखाते हैं आज की मुरली में। तो उनसे पकड़ के मैंने पूछा कि बाबा ने आज क्या सुनाया, क्योंकि अभी स्कूल की बात वहीं रहने देते हैं, अभी आएंगे थोड़ी देर पीछे, अभी इधर पहुंच जाते हैं। तो मैंने कहा बाबा ने क्या सुनाया, थोड़ा कुछ सुनाओगे? क्योंकि पूछने से हमको ऐसा लगता है कि कोई वो नहीं है, किसी से ज्ञान पूछना कोई अहंकार का प्रदर्शन नहीं है। पूछना माना खुद का रिवीजन भी होना और दूसरे को भी याद दिलाना, वो भी योग है हमारे हिसाब से। तो कि भगवान की हर शब्द को याद रखना ही भगवान से प्रेम है, और भगवान का शब्द स्मृति में है तो उसकी याद है। बाबा ने कहा बच्चे स्मृति ही याद है, स्मृति जहां विस्मृति होती है तब तुमसे पाप कर्म होते हैं। अगर आपको याद है कि हम इस समय कौन सा चल रहा है तो आप समय पे अटेंशन दोगे ना, कि समय दोबारा लौट के नहीं आएगा। और कलम है भाग्य की रेखा बनाने की, कितनी भाग्यवान आत्माओं की निशानियां गिनाई बाबा ने, कितनी निशानियां थी। जब हमें याद है तो उनको हमने खड़े करके, हम खड़े रहना तब तक बताओगे नहीं बाबा का, खड़े रहो इधर ही साइड में। फिर जितने भी लोग आए, फिर हमने कहा सबको किसी न किसी को पूछ। बाबा ने 4 पेज की मुरली चलाई, कम से कम ना रहे होंगे तो 2000-2500 शब्द रहे होंगे ना। बाबा ने कहा एक एक शब्द करोड़ों का है। हमने कहा चलो एक शब्द सुना दो मुरली का, खड़े होते गए। बोले बहुत अच्छी मुरली थी, मुरली में मजा आ गया, अभी सुनाएंगे ना, खीर खा लेने दो। हमने कहा खीर पकड़े रहो अभी, अभी जिसके लिए आए थे वो उसका तो याद ही नहीं। बोले साल में एक बार आते हैं बाबा से, तो क्या फिर से सुन लेंगे पढ़ लेंगे, दोबारा कभी पढ़ते ही नहीं है। जितने कम से कम 10 लोग जमा हो गए, किसी ने एक शब्द भी नहीं सुनाया, बड़ी तकलीफ हुई हमको कि कहीं हम भी तो भ्रम में वैसा ही नहीं है कि जैसा लोग चल रहे हैं। वो सब हमसे बहुत सीनियर थे, जिनने हमको समझाया, हमको वो बताया। अब क्या बताएं कि संग दोष भी बहुत घातक हो जाता है कभी कभी। बचपन में अब स्कूल में पहुंचते हैं, कहाँ थे नहीं कहाँ थे लास्ट, हाँ तो फेल हो गए थे। तो माता जी याद दिलाते रहना, क्योंकि भटकना थोड़ा हो जाता है। माता जी को बहन जी ने समझाया कि पढ़ाना जरूरी है। वो क्या है कि कोई सेंटर नहीं था उधर पर, माता जी भी 6 महीने में एक बार जाते थे, बहुत दूर था सेंटर, उतना संभव नहीं था। जो गीत शायद ज्ञान का जो बीज पड़ा हमें, वो गीत सुन सुन के, सदगुण अवगुण के कारण कोई हीरा है पत्थर, ये 3री क्लास में थे तब गाना सुना था। मतलब गीत सुन सुन के बहुत वो था कि जो सुनता है ना जैसा, तो वैसा होता जाता है, अंदर जाता ही जाता है। जल, बाबा ने कहा ना जल डालते जाओ कचरा ऑटोमेटिक निकलेगा, ज्ञान डालते जाओ। आज ने कहा घृत, ज्ञान का घृत डालते जाओ, किस में? बुद्धि रूप आत्मा रूपी दीपक में। घृत क्या है? ज्ञान का घृत है। तो वो जब माता जी गए तो फिर हमने, उनने बोला कि सरकारी स्कूल में ही एडमिशन करा देते हैं, अब उतना तो है नहीं, तो ठीक है। हमने कहा मौज है, अब तो इधर सरकारी में कोई ज्यादा टेंशन पे ही रहेंगे, स्कूल जाओ चाहे ना जाओ टेंशन पे ही रहेंगे। लेकिन जब एडमिशन कराने माता जी अंदर गए तो मैं भी साथ में था। वो जो मार्कशीट देखा ना, तो इंग्लिश में 5 नंबर और गणित में 0 और 8 क्लास। तो टीचर ना बड़े माता जी को बहुत बोले, जी क्या पढ़ पाएगा, पास ही नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। कहा क्यों इसको भेजा, खराब करते हो अपना, अभी टेंशन लगा दो इसको, कहीं काम में मजदूरी करेगा, आप इतने आर्थिक स्थिति से भी वो हो और इसके ऊपर पैसे खर्च करते हो एडमिशन करा के। माता जी ने, जी जब इतना सुनाया, बहुत कुछ सुनाया उनको, पता नहीं हमारे हृदय में कैसा परिवर्तन हुआ कि जब वो अनपढ़ महिला जो खुद पढ़ी लिखी नहीं है और मेरे ऊपर इतनी मेहनत कर रही है, मैं कितना गवार हूं, इतनी भी अकल नहीं है कि दूसरा मेरे ऊपर मेहनत कर रहा है, क्यों ना मैं अपने ऊपर मेहनत करना शुरू कर दूं। तो माता जी तो बहुत कहीं भाजी सब्जी कुछ कुछ बेचते थे गांव जा जा के। एक हम भी कभी गए 7-7 किलोमीटर 8-8 किलोमीटर सुबह से जाते थे 4 बजे अमृतवेले से, और पता नहीं कब लौटते थे। धारणा में इतनी मजबूत थी कि हमको बिस्किट लेके खिला देती थी और खुद नहीं खाते थे। ज्ञान में तो हम बहुत बाद में आए, लेकिन धारणा इतनी मजबूत देख के कोई मूल्य नहीं सुनना, लेकिन धारणा में इतनी प्रबल कि जो परिवार के लोग थे सारे लोग बहुत विरोधी थे। ये तक के कि उनकी जो सासू जी थी, तो वो हमारी दादी मतलब, तो उनको बोल दिया कि अगर तुम खाओगे पियोगे नहीं ना, तो जबरदस्ती भी खिलाते थे, भूखा भूखा रखते थे माता जी को। और हम लोग को तो क्या के लड़की और लड़कों में उधर भेद था गांव में, कि लड़कों को ज्यादा प्यार करते थे और लड़कियों को ज्यादा नहीं करते थे। तो हमको ज्यादा चाहती थी दादी, क्योंकि बीच का हो या हम तो किसी के साइड नहीं थे, दादी की तरफ ही रहते थे। माता जी तो मारती थी, दादी प्यार से खिलाती थी जो कुछ बोलो, तो उसी तरफ रहते थे। लेकिन माता जी एक ही कमरा था, उधर फोटो लगा था बाबा का। बचपन से हमने आज तक अपने पिताजी को नहीं देखा, क्योंकि उनकी मृत्यु के बाद हमारे जन्म हुआ था। पहला जो फोटो हमने देखा वो बाबा के जो कमरे में फोटो लगा ना, ऐसा छोटा सा था A4 साइज का, वो एक फ्रेमिंग हाथ से माता जी ने करके और घर में लटकाया हुआ था। तो पहला फोटो वो देखा हमने, और लाइट हमने पहला शिवलिंग का वो देखा, और लक्ष्मी नारायण का फोटो देखा। ये 3 फोटो देखा, अपने पिताजी का फोटो नहीं देखा कभी। तो कहां थे और उसके पहले और पहले, हाँ दादी, दादी में थे। दादी बहुत वो करते थे, और चूंकि प्याज लहसुन तो छोड़ो, मीट मसाला भी लोग खाते थे, तो ऐसा जब कुछ कार्यक्रम होता था तो सब खाते थे, तो मम्मी के साथ, मम्मी को अलग कर दिया था, अलग रहती थी वो, खुश अलग थी कि ताकि इनके साथ हमको खाना, वो कभी हम लोगों को कुछ भी चीज में मना नहीं किया। तो क्या हुआ कि बचपन से तो ये सब चीजें खाते नहीं थे, वो खाने के संस्कार तो माता के थे। तो ये क्या दादी ने क्या किया, प्यार प्यार से सोचा कि इसको भी खिला के देखते हैं। तो ये जो थाली आई जब, तो मीट परोसवाने की कोशिश की, और इतनी एलर्जी थी हमको उससे कि जैसे ही उनने परोसवाया और दादी के बाल पकड़े हमने और बहुत मारा दादी को। तुम माता जी तो बाबा से कहती थी कभी हम लोग को कुछ शिकायत नहीं, और कभी ये नहीं कहा कि उधर नहीं जाएगा। कभी भी जब हमको ज्ञान समझ में आया तो हमने पहला प्रश्न किया कि तुमने हमको बचपन से अगर दिया होता तो हम इतने फंसते क्यों, लटकते क्यों। ये तो ठीक है बहुत मारा, लेकिन बाद में मम्मी जब हम बड़े हुए, जब मम्मी ने बताया कि हम बाबा के सामने बैठे थे और रो रहे थे कि कब तक ऐसा चलेगा, लेकिन तुमने जब मारा तो खुशी तो हुई। आप समझ गए कि बोले भले फिर हमें कितना भी तकलीफ कष्ट था, लेकिन ये था कि बच्चों में अच्छे संस्कार हैं, तो ये खुशी थी। बचपन में कभी हमने माता जी थी तो ये अनुभव नहीं किया कि प्यार करती, लेकिन प्यार था उनका अंदर का था। बाहर से जैसे आजकल माता पिता क्या करते हैं कि अपने बच्चों को, हाँ, और दूसरे के बच्चा आ जाए तो उसको भगा देते। तो माता जी में हमने ये गुण का भी नहीं देखा। दूसरे को बच्चे को बहुत प्यार करते थे और अपने बच्चों को बहुत मारते थे। हमने कहा ये तुम्हारा बाबा बहुत गड़बड़ है जी, कहां से बाबा। एक बार पुराना कहीं भटक जाता हूँ, समझ में आता है ना कहां, क्योंकि मैं लाइन थोड़ा ट्रैक ही चेंज हो जाता है, बात प्यार की हो रही है तो फिर क्या। तो वो भी टेस्ट होता है ना कि हम बाबा ही, हम भी बहुत विरोधी थे बाबा के, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ज्ञानी नहीं, बाबा के बहुत विरोधी थे। मुरली में पढ़ते थे कि सबको प्यार करो और तुम बहुत मारते हो, कैसा है तुम्हारा बाबा, धारण कुछ घुसता नहीं है बुद्धि में और दूसरे को ज्ञान सुनाते हो, ज्ञान नहीं देना किसी को। और बाबा के कुछ शब्द हमको पसंद नहीं थे। वो पहला शब्द था कि बाप, अब ये कोई भाषा है कि किसी को बोल दो तुम्हारा बाप ऐसा है तो पिटाई हो जाती थी गांव में। और तुम्हारा बाबा की ऐसा सभ्यता भी नहीं आती कि बाप कहता है डायरेक्ट, भाषा कैसी बोलता है, प्यार की भाषा बोलो, रेम की भाषा बोलो, पिताजी बोलो कुछ, वो बाप क्या है, वो तो बाद में होता चला ना ऐसे थोड़ी। तो फिर जब थोड़ा समझदार हुए तो इसको इधर ही चौप करते हैं, कहाँ पहुंच जाते हैं। तो फिर पढ़ाई की बात थी, तो जब उनने कोचिंग लगाया कि इस बार कैसे भी करके बच्चे को पास कराना है, तो सेंटर हम जाते थे, 8 क्लास में कोचिंग लगाया, सेंटर हम जाते थे। तो वो टीचर, पता नहीं हमको नफरत भी थी कि प्यार भी था, क्या था समझ में नहीं आता था कि बाबा से प्यार है कि नफरत है, कोई चीज क्लियर नहीं थी। वो टीचर गायत्री परिवार का था, गायत्री परिवार सब जानते हैं, गायत्री परिवार का फॉलोअर था वो। और किसी ने बता दिया जी ओम शांति वाले हैं जी, कुछ नहीं खाते, अंडा मिर्ची मसाला जी, मीट मटन नहीं खाते हैं। बोले तुम अभी से ओम शांति में जाने लगे इतने छोटे हो, है? कोई ओम शांति, ओम शांति नहीं, इधर पढ़ाई में ध्यान दो। तो बड़ा अंदर से एलर्जी हो गई, बोले पढ़ने लिख बनता तो कुछ नहीं था, और उसने इंसल्ट कर दी ऊपर से, ओम शांति में जाना बंद कर दो, पढ़ाई में ध्यान दो, आता जाता कुछ नहीं, इसे कहते ओम शांति वाले। बस लग गया बात, ये क्या बोलता है। जब तक ठेस नहीं पहुंचती ना तो परिवर्तन नहीं होता। और ठेस अब छोटे थे तो वो छोटी बात भी बड़ी लगती थी ना, तो ठेस पहुंच जाता था। अब इधर अब तो बाबा क्या क्या कहता है, जानवर जैसा कल नहीं है, बड़े हो जाते तो बड़ी तरह के से बताता है, जानवर जैसा कल नहीं है, भ्रष्ट बिल्कुल भैंस बुद्धि बन गए हो, कैसे कैसे शब्द बोलता है बाबा। तो बात लग गई, अब तो अंदर से वो हो गया, बाबा के पास पहुंचा मैं, बाबा जी ऐसा बोलता है, करना क्या है आप बताओ, छोड़ दूं क्या, टीचर को छोड़ दूं क्या, नहीं जाना उधर कोचिंग, पढ़ना ही नहीं है आप। पता नहीं कैसा क्या लगा कि नहीं बच्चे, अगर तुम पढ़ोगे नहीं छोड़ दोगे तो बाप की बदनामी हो जाए। तो कहा कि बाबा कैसे करें, मेहनत तो हमसे होती नहीं है, समझ में कुछ आता नहीं है, भरा तो भूसा है, संग भी कैसे दिला दियो है कि जो लोग पढ़ते भी नहीं है ऐसे के साथ घूमने। अब संग भी सही नहीं था ना, कि खुद नहीं पढ़ते थे तो दूसरों को कैसे। तो प्यार तो था अंदर, कहीं ना कहीं जमा रहा होगा कहीं किसी जन्म का, कि भगवान की नाम बदनामी नहीं करनी है। तो क्या किया कि पढ़ना शुरू किया, धीरे धीरे पढ़ना इतना शुरू किया कि जब 8 क्लास के एग्जाम दिया इस वर्ष, तो मतलब सप्लीमेंट्री होती ना, एक सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री से फिर पास हुए, तो बड़ी खुशी हुई, थोड़ा थोड़ा अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा कि नहीं बाबा मदद करता है, चाहे ओम शांति टिक मार करके भी लिख दो, लेकिन दिल साफ हो तो पास करा देगा। दिल अगर साफ है तो बड़ा से बड़ा एग्जाम हो दुनिया का पास करा देगा। आज तक मैंने जीवन में इंग्लिश की एक लाइन भी याद नहीं की, लेकिन इंजीनियरिंग में 79 पॉइंट से पास कराया बाबा ने। बाद में पास होने के बाद तो ये लगा कि टीचर के ऊपर केस करना चाहिए, क्योंकि मैंने लिखा क्या है और उसने समझा क्या है, और ये स्टूडेंटों का क्या है कि भविष्य खराब कर रहे हैं, मैं क्या लिख के आया और कैसे पास कर दिया। बाद में दोस्त ने समझाया कि नहीं तुम्हारे ब्रह्मा कुमारी इसकी बदनामी होगी, तुम्हारी कापी जब चेक होगी ना, इसलिए कुछ नहीं करो, ज्यादा होशियारी नहीं, शांति से रख लो जितना मिला है परसेंटेज। मैंने कहा कि परसेंट अचार डालूंगा क्या मैं, नॉलेज तो होनी चाहिए ना। बोले नहीं, तुम्हारे अंदर नॉलेज है, काबिलियत है, तुमने डायग्राम बनाए हैं, उसके बेस पे ही मार्क्स मिलते हैं, थ्योरी कुछ भी हो नॉलेज होना चाहिए। मैंने कहा छोड़ो, चलो ठीक है, कौन सा अपन को कहीं डिग्री अप्लाई करनी है, जो होगा देखा जाएगा, छोड़ो ठीक है, बाबा का नाम खराब होगा, ठीक है नहीं करते केस क्या, कुछ भी डिग्री भी नहीं लाई आज तक, वो तो वही है। तो ये प्यार है बाबा का, कैसा प्यार है वो तो वही जाने, क्या जी प्यार है, क्योंकि एग्जाम भी देने गया था, बीच में आर्थिक स्थिति गंभीर थी, बीच में ड्रॉप कर दिया, तो कॉलेज नहीं जाता था, क्योंकि कॉलेज न जाने का एक और कारण था, बहन जी ने बीच में, अब चक्कर भी तो बड़े खराब होते हैं ना युवा अवस्था में, जैसे ट्रांसफर हुए लटक गए नाम रूप में। तो मैंने कहा कि बाबा ने कहा धरत पर ये धर्म नहीं छोड़िए, चाहे एजुकेशन कंप्लीट हो चाहे ना हो, कॉलेज तो जाना ही नहीं है हमको, जाके शहर आया था कॉलेज पढ़ने, वापस रिटर्न गया। मैंने कहा कुछ काम करूंगा, बिजनेस करूंगा, जब उद्देश्य ही है पैसा कमाने का। बहन जी भी बोलती हैं कि नहीं पैसा कमाना जरूरी है। मैंने कहा बाबा की सेवा करना है ना, पैसा ऐसा कमा क्या करेंगे। बोले नहीं जरूरी है पैसा कमाना, क्योंकि अगर तुम इसी अवस्था में ज्ञान में चल पड़े और घर की स्थिति नहीं बदली तो इससे भी नाम बदनामी होगी। तो मैंने कहा ये भी बात सही है, ठीक है घर सुधार के आता हूँ मैं, घर जाता हूँ वापस। वहाँ बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत की, वो अलग छोड़ो, किसका लंबी दास्तान है बाद में सुनाएंगे। अभी पीछे कहाँ थे, स्कूल डेली जाने लगे, सब कुछ के लिए। और बाबा देखो मदद करता है अगर उससे बोलते हैं। भगवान से प्यार कैसे करें। तो आजकल दुनिया में, दुनिया का भी लेंगे और इधर भी लेंगे, तो दुनिया में प्यार कैसे करते हैं? कैसे हो जाता है प्यार है? कैसे प्यार करते हैं सब बताए जल्दी जल्दी, टाइम तो इतना ज्यादा है। गुणों का आकर्षण, लेकिन आजकल गुणों का आकर्षण नहीं है दुनिया में। दुनिया के हम पूछ रहे हैं, इधर का नहीं, इधर का तो देखेंगे। दुनिया में कैसे हो जाता है प्यार? पहला है, पहली जो विधि है बाहर का, लव एट फर्स्ट साइट। सारे सिनेमा जो है ना, बाबा खुद अपना अनुभव सुनाता है कि मैं कौन सी फिल्म देख लिया था, सौभाग्य सुंदरी और लट्टू। जाके पहले तो सन्यासी खेलात थे बचपन में, फिर जाके क्या किया, शादी कर लिया। सोचने की बात दर पे है कि वो आदि पिता अपने बच्चों, अगर अपनी गलती ना भी बताए वो, तो कोई उस पे उंगली नहीं उठा सकता। लेकिन वो क्या कहना चाहता है, क्या हम समझ रहे हैं उस बात कि बच्चे सिनेमा नहीं देखना है, और सिनेमा छोड़ो, इतनी हद तक हो गई कि बाबा कहता है कि अमृत वेला करो। कितनी धारणाएं बताई, धारणा ही बाबा से प्यार है ना, अमृत वेला करना, मुरली सुनना। लेकिन कई आत्माएं हैं जो अभी भी उसी पुराने उसमें लगी हैं, पुरानी दुनिया को तलाक दिया ही नहीं है और इधर पे नई शादी करने आ गए बाबा से। पुराने से शादी तब होती ना जब तलाक हो, नहीं तो क्या हो जाता है? अगर तलाक नहीं दिया किसी को और दूसरी शादी कर ली तो क्या होगा? केस होने के बाद क्या होगा? जेल में जाने के बाद क्या होता है? पश्चाताप होता है। तो बाबा सुनाते हैं, तो लव एट फर्स्ट साइट क्या है? पहली नजर का प्यार, पहली नजर का प्यार। जैसे ही बाबा के कमरे में पहली बार, याद करना सबके, पहली बार बैठते हो और गाना चल जाता है अच्छा, तो कैसा, क्या अनुभूति होती है? वही है पहली नजर का प्यार ना। बाबा से कैसा प्यार हो जाता है? दुनिया में कोई कितना भी फंसा हो, हम तो खुद दुनिया से निकल के आए ना, फंसे कितने थे, लेकिन कैसा था आकर्षण, क्योंकि समझ में आ गया कि प्यार क्या है, असली प्यार। आत्मा शरीर के प्यार की प्यासी नहीं है, आत्मा आत्मक के प्यार की प्यासी है, परमात्मा मिलन की प्यासी है, उसकी प्यास है। हम तो इधर उधर खोजते रहे मूर्खों की तरह। अब एक फीट जमीन इधर खोदोगे, एक फीट उधर खोदोगे, तो पानी कहां से निकलेगा? खोदना ही तो एक ही जगह खोदते चलो, कभी ना कभी तो पानी जरूर निकलेगा। नहीं आता था समझ में, हमने कहा बाबा नहीं आती हमको मुरली, तुम्हारी भाषा बिल्कुल हमारी समझ के परे है, लेकिन हम भी मूढ़मति हैं। जिस चीज में घुस गए तो जब तक पानी ना निकाल लेंगे तो हम भी नहीं भागेंगे। सारे चक्कर से छूट गए बाहर, लेकिन इधर लग गए कि चलो सेवा, सेवा ही से, तुम्हारी सेवा ही से हमको प्यार है ना, खुशी तो मिलती है सेवा। नहीं लगता, योग कभी नहीं लगा, कई साल लग गए, इससे पूछा उससे पूछा, और जिसको इधर जिससे पूछो सब अपनी मत बताते हैं। इतनी विधियां बताएंगे करेंगे कुछ नहीं, दूसरे को इतनी कठिन विधि बताएंगे कि बाद मत पूछो, ऐसा करो फलांडे काम करो। लेकिन जो धारणा मूर्त होके बताता है व्यक्ति, उसकी बात लग जाती है। तो ऐसा ही एक भाई था, उसको अपनी कमजोरी भी कहीं भी प्रकट नहीं करो, जहां शक्तिशाली वायुमंडल हो। सारी कहानी इधर ही क्यों समझ में आती है? इधर शक्तिशाली वाइब्रेशन है, पावरफुल लोग बैठे हुए। ऐसा नहीं कि हमने कई लोगों को नहीं सुनाया कि भाई जी ऐसी ऐसी बात है, मैं भी सिनेमा देखने की मेरे को आदत है, अब कैसे छूटूं मैं उससे। बोले अब पूछा भी ऐसे व्यक्ति से जो खुद देखता था। अब हमको तो ये था कि भाई बहुत पुराने हैं, 16 साल से है, बड़े हैं, समझदार हैं, लेकिन खुद पूछा कि अब दुनिया के भी चक्कर हैं, क्योंकि ज्ञान तो हमने समझा नहीं बाले बचपन से, तो क्या कभी गए नहीं, रेगुलर थे नहीं ज्ञान में। तो वो बोले नहीं थोड़ा तो चलता है, क्या है कि ज्ञान योग कितना करोगे, ज्ञान योग करते करते थक जाओगे। अब क्यों थक, खुद थका हुआ था तो वो क्या बोलेगा कि ज्ञान बोरियत है, थोड़ा एंजॉयमेंट चाहिए, फिल्म देखते रहो कोई दिक्कत नहीं। बीके हो के ये सी बात का, हमने कहा चक्कर भी है ये तो गलत है ना, एक म्यान में दो तलवार कैसे रह सकती है, या बाबा रहेगा दिल में अगर सोफा रखा है तो फिर बाबा कहाँ रहेगा, दो चार आत्मा बैठ जाएंगी उसमें, तो दिल में चेयर रखो बस एक ही आत्मा बैठे, दो चार लोगों को बैठा के रखा है तो कहाँ है, कहाँ बाबा बैठेगा। तो बाद में पूछा कि मुरली में बहुत शब्द आते थे, क्या है कि मुरली सुनाना, सुनाने में भी बाबा ने कहा ना आज की मुरली में लज्जा नहीं करनी है, लेकिन लज्जा करते हैं जो काम महाशत्रु है, इसका कभी समझाया नहीं बहन जी ने, छोड़ उसको घसीट देते थे, अरे छोड़ो काम आम कहाँ तुम चक्कर में पड़े, चलो आगे, मतलब हर एक पॉइंट को क्लियर करना चाहिए। पता नहीं कौन व्यक्ति को किस प्रकार की बीमारी, कोई आके थोड़ी छोड़ पूछ लेगा डायरेक्ट, सबकी अलग अलग परेशानी है, सबको अलग अलग है, लेकिन बाबा जो मुरली सुनाता है उसमें एक ही मास्टर की है, बाबा की जो मुरली है एक ही मास्टर की है, उससे सारे ताले खुल जाते हैं, किसी को कोई बीमारी है, किसी को कोई बीमारी है, सारे ताले खुल जाते हैं उससे। तो जब पता चला तो एक भाई से हमने कहा, बहन बहनों का तो बहुत रिगार्ड था, क्योंकि माता जी ने शुरू से सिखाया था कि जैसे तुम ना मंदिरों की देवियां हैं ना, ये बहनें हैं, ये भगवान का रूप है, कभी इनका बात टालना नहीं तुम, तो आंख बंद करके जो बहन जी बोले जी हाँ जी हाँ जी, तो बहनों से मैं कैसे पूछूं कि बहन जी तो शुरू से समझाती आ रही कि भाई किसी चक्कर में तो नहीं हो, पूछ लेती थी, चक्कर वक्कर में नहीं फंसना, बाबा के चक्कर में फंस गए, अब दुनिया के चक्कर छोड़ दो सारे, अब है तो चक्कर में तो फंसे ही हैं, अब कैसे बताएं, बहन है वो, अब भी बताएंगे तो डांट अलग है और फैल अलग जाएगी बात। तो वो अलग समझ में आ रहा है ना, क्या कि कहीं कहीं पहुंच जाते, वो पहला ही पॉइंट अभी चल रहा है, लव एट फर्स्ट साइट। तो भाई को हमने पकड़ा जिससे पूछा था पहले, वो खुद चक्कर में पड़ा था, तो क्या है, तो एक भाई को पकड़ा हमने जो अच्छा था, पुराना था, ज्ञानी था, तो हमने कहा ऐसा चक्कर है क्या करना चाहिए, बोले कोई नहीं चलता है सब, दोनों को चलाओ तुम। बाद में पता चला कि कुछ साल जब रेगुलर चले ज्ञान में, तो वो खुद चक्कर में फंस के चक्कर बाबा का चक्कर छोड़ दिया, वो खुद चक्कर में चला गया। तब एक बात माइंड में क्लिक हुई कि इस मार्ग में अगर चलना है तो अकेले चलने का है, उस संग से परहेज करने का है, ऐसा संग ना करो, ऐसी आत्माओं को ना देखो जो ज्ञान युक्त, ज्ञान मुक्त और योग मुक्त है, उनको छोड़ दो, उनसे मुक्त हो जाओ, बाबा सिर्फ बाबा, और बाबा ने कहा सी फादर फॉलो फादर, बस इसके अलावा किसी को नहीं देखना है, और आंख बंद करके उस पर निश्चय चाहिए। बाबा ने कहा है जहां मोहब्बत है तो मेहनत नहीं होती, कितने भी कष्ट तूफान तो आएंगे इस मार्ग में, बाबा ने ये नहीं कहा कि मैं सब तूफान तुमको तोहफा बना दूंगा, नहीं, तूफानों को तोहफा तो नहीं बनाएगा, क्योंकि तूफानों से ही बढ़ के तो फिर ये समझ में आया कि अब संग पकड़ना पड़ेगा अच्छी आत्माओं का। कहाँ मिलेगा संग? संग तो पहले है कि मुरली, मुरली से बड़ा संग। मुरली सुनना तो हमने 2 साल पहले से ही शुरू किया, क्योंकि मुरली समझ में नहीं आती थी, ज्ञान समझ में आता था, कोई सरल करके सुनाए तो अच्छा लगता था। कभी भागवत चलती थी ना, उधर भी बैठ जाता था मैं। और जब पवित्रता की बात हुई, पवित्रता की जो थोड़ी चीजें समझ में आई, बाबा ने कहा कि मुंह काले कर लेते हैं, ट्रेटर बन जाते हैं, दंड पड़ेगा। 15/11/2003 की अव्यक्तवाणी में कितनी गहरी बात है बोली बाबा ने। क्या बोला? ब्राह्मण माना पवित्र आत्मा, संकल्प मात्र भी अगर आप पवित्रता है तो क्या होगा। यहां तक कि ये तक बोला कि माता का अगर मोह है तो वो भी अपवित्रता गुण है। अब बताओ कितनी ऊंचे लेवल की पवित्रता की बात कर रहा है। ये तो हमको समझ में भेज में घुसेगी कैसे बात। पवित्रता 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 सुन सुन के तो हालत हो गई कि ये तो ज्ञान ही पवित्रता का है। और मुरली अगर याद रखना है, किसी ने बोला कि मुरली के पॉइंट हमको तो याद नहीं रहते, तो बोले याद रखने के लिए पहले तुमको संपूर्ण पवित्र बनना पड़ेगा। बनना कैसे है ये किसी ने विधि नहीं बताते थे, ज्ञान तो बहुत ठोकते थे, विधि किसी ने नहीं बताई। मतलब ये ऊपर ऊपर का बता देते थे कि काम क्रोध मोह लोभ अहंकार ये सब रावण है मत है, और ज्ञान गुण शक्तियां पवित्रता प्याम में बस इतना जान लो तुम, मुझसे ज्यादा क्या जानो। और जानना तो पड़ेगा ना। पवित्रता का बहुत महत्व है। अब इधर पर एक एग्जाम्पल ले कि दुनिया में लोग बहुत बड़ा पंडाल लगा हुआ था, बहुत अच्छा प्रवचन किया, आई एम इंस्पायर, मैं इंस्पायर हो गया उसको सुन के, नशा छोड़ाता है तुरंत। मतलब ऐसा प्रवचन किया कि बहुत सारे लोगों ने अपना गुटखा तम्बाकू बहुत सारी चीजें छोड़ दी। ने कहा कि इतना पावरफुल व्यक्ति है तो बहुत अलगा हो, इनने करोड़ों लाखों लोगों के जीवन को बदला है, लेकिन अपवित्रता के कारण सारा उसका जो था सर्वनाश हो गया। उनको भगवान का ज्ञान नहीं है, हम ब्राह्मण आत्माओं को भगवान का ज्ञान है। अगर हमारी संकल्प मात्र भी अगर अपवित्र चलते हैं, क्योंकि विश्व के रचयिता न रचना रचता को जानने वाले हो, उनको भगवान का ज्ञान नहीं, इतनी कड़ी सजा है। और अभी नहीं किया उसने, 20 साल पहले का केस है वो तो। लेकिन इस ज्ञान को समझने के बाद हम कितने, हमारे संकल्प कितने पवित्र हैं, क्योंकि हमारी सजा कोई छोटी नहीं होगी, क्योंकि हमारा टीचर बहुत बड़ा है। और उसके पवित्रता से प्यार माना, उससे प्यार। तो ये तो लव एट फर्स्ट साइट की बात है कि दुनिया में लोग इस चमड़ी के पीछे बहुत परेशान हैं। लोग माँ बाप की नहीं देखते कि इतने साल से उनने पाला वो किया सारी चीजें की, एक सेकंड में कैसा वैराग्य आ जाता है। और हमको स्वयं भगवान पढ़ाने वाला अभी भी हमारी दुनिया में राग है, तो कहाँ प्रीत जुट पाएगी, क्योंकि एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती ना। तो उधर से वैराग्य, इधर राग ना। अगला है निश्चय नशा निशाना। निश्चय हो, अटूट निश्चय हो भगवान पे, क्योंकि हमने बहुत पुरानी मुरली फर्स्ट टाइम डायरी में एक ही वर्ड नोट किया था, ब्राह्मण का कभी अकल्याण नहीं हो सकता, ब्राह्मण कभी भूखा नहीं रह सकता, दाल रोटी अंतिम तक मिलेगी उसको। ऐसे पावरफुल पॉइंट है ना, हमेशा बुद्धि में घुस जाने चाहिए। और जो ना जब कंप्यूटर में वायरस आ जाता है तो क्या करते हैं, ऐसे पॉइंट है ना जो एंटीवायरस का काम करते हैं। तो ये पॉइंट लिख लेनी चाहिए ऐसे कि ब्राह्मण का कल्याण नहीं हो सकता तो निश्चय बुद्धि हो गए बिल्कुल। अब तो टेंशन नहीं है का कल्याण तो होना ही नहीं, निश्चय नशा निशाना, नशा किस चीज का हो हा? गांव में एक 5 मिनट ले सकते ना। गांव में क्या होता है कि हमने देखा लेबर लोग वो मजदूरी करते हैं तुरंत जाके शराब खाने में पहुंच जाते हैं, और उनसे पूछा कि इतना तो मेहनत करते हो और जाके नशा कर लेते हो, बोले हमारा तो कमाते ही इसलिए है पीने के लिए, शौक ही वो है हमारा। अच्छा तो इतनी मेहनत करते हो, बोले पीने के लिए। अच्छा जीते किस लिए हो, बोले पीने के लिए, बोले नशा ही हमारा शौक है। देखो उनका नशा 10-10, 20-20 मिनट में खत्म हो जाता है, वो कितने याद करते हैं, और हमारा नशा पता चला कि आज अमृत वेला बहुत पावरफुल किया और अगला पता नहीं कब होता है, पता चला अमृत वेला तो छोड़ो आज किया और 10 दिन बाद हो रहे। तो नशा कैसे बनाए रखे, उसका एक ही है कि मुरली में डूबना पड़ेगा, और नशा आसानी से बनने वाला नहीं है, लंबे समय का है, क्योंकि इधर पे प्राप्ति लंबे समय की है तो नशा भी लंबे समय का चाहिए, उधर तो अल्पकाल का है, क्षणभंगुर है, इसलिए क्षणभंगुर है तो थोड़े काल में मिल जाता है, थोड़ा सा मिलता है, इधर पे कितने जन्मों की कमाई है। तेज बोले ना, डर लगता है क्या? तो ये चीज भूल जाते हैं ना, हमेशा याद कैसे रहे, हमेशा नशा कैसा बने रहे। निशाना लक्ष्य सामने हो, जब तक पुरानी दुनिया से वो नहीं होगा, अर्जुन को सारी चीजें भूलनी पड़ी ना, कॉन्सेंट्रेट होना पड़ेगा लक्ष्य की तरफ, तब निशाना लगेगा। फिर अर्जुन क्या करता है, एक घोड़ सवार, जब गेम तो सब लोगों ने खेला होगा, नहीं तो माताएं तो रस्सी भी कूदी होंगी ना, रस्सी कूदते थे ना पहले, गेम भी खेलते थे, छलांग लगाने वाला, बैरियर आता है आगे छलांग लगा दो। तो ऐसे ही इसको समझो, आत्मा को समझो घोड़ सवार है, और शरीर को समझो घोड़ा है, और निशाना रखो कि इस मार्ग पे चलना है। अब चलना कैसे है कि जब घोड़ सवार होता है ना तो वो ट्रेनिंग अपने घोड़े को दे देता है, तो जब घोड़ सवार चलता है तो आगे देखता है कि बैरियर आया तो उसको कहता है जंप, और घोड़ा जंप करता है, फिर चलता है आगे और फिर कहता है कि जंप, और घोड़ा जंप कर जाता है, फिर कहता है जंप, और धीरे धीरे करते करते घोड़सवार को ना नींद लग जाती है, और घोड़ा आगे देखता है बैरियर आ रहा, वो खुद जंप करता है और सफर चलता रहता है। ऐसा हमारे जीवन में हर चीज, धारणाएं, अमृत वेला, मुरली क्लास, सारी ऐसी नेचुरल हो जाएंगे, सुबह मॉर्निंग में ऑटोमेटिक शरीर उठ के बैठ जाए भले आत्मा सोई रहे, शरीर उठ जाए ऑटोमेटिक, बाबा के कमरे तक चले जाए हम, पानी गिरे, आग गिरे, सोच गिरे, बाबा के कमरे में चले जाओ, मदद मिलेगी, ठंड हो कुछ हो नहा लो ठंडे पानी से, आत्मा भले सोई रहे, सोने दो आत्मा को, शरीर चलता रहे, घोड़े को बिल्कुल सिखा दो, घोड़े को सिखा दो बिल्कुल, घोड़े को नहीं जगाना तो पड़ेगा ना, शरीर कैसे जागेगा, और जब तक इस शरीर को नहीं तपाओगे आत्मा नहीं तप सकती। अगर लोहा से तलवार बनानी है धारदार तो उसको तपाना पड़ेगा, आग में तो डालना पड़ेगा, ज्ञान की आग में डालो, योग की आग में डालो, प्रेम अटूट चाहिए। कैसा लैला मजनू को प्रेम देखो, कैसे ना फंसे उस दीवाने में जो मिला नहीं आसानी से किसी मजनू खाने में। देखो दुनिया में, देखो लैला मजनू के दीवाने को, ताजमहल बना डाला बंदर खाने में, ऐसे हैं मजनू दीवाने इस दुनिया के जमाने में। तो बहुत लैला मजनू तो कैसे होते हैं, वो भी एक बाबा क्यों कहता है कि बच्चे तुम मेरे आशिक हो, मैं तुम्हारा मासिक हूँ। बाबा क्या, क्योंकि दुनिया का इसी में है ना, आशिक मासिक की बात हम सुना रहे थे। देखो आप लोगों का मन लगा, टाइम भी नहीं देख रहे कि टाइम ओवर हो गया है, टाइम तक भूल गए, नहीं तो वैसे तो टाइम पर घंटी बजा देते थे। अब मेरे को लगता है कि मैं सुनाऊं क्या, और सब बैठे हैं वो बोलते भी नहीं है कि टाइम हो गया। आशिक मासिक हो जाते हैं तो देखो, जब हम ऐसे बाबा के ज्ञान के आशिक हो जाए ना, कि कोई सुनाता रहे और दिल कहे सुनता रहे, बस दिल कहे सुनता रहे। और बाबा ने कहा कि जो कुछ आए बच्चे दिल से सुनाओ, दिल से सुनाओ, दिल से सुनाओ। और ऐसा नहीं बोल नहीं करो किसी को, हवा में उड़ा दो मैं आत्मा हूं, बिल्कुल वही वही चीज सुन के बोर हो जाएगा व्यक्ति। मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं, कर नहीं रहा मन से लेकिन दूसरे को सुनाया जा रहा है। ले आया बड़ा पुर्जा, पढ़ के सुना दिया, नहीं अनुभव क्या किया ज्ञान का। स्टेज में जाएंगे, माइक के सामने फोटो वीडियो बना लेना आप हमारी, और व्हाट्सएप में डालना है। ड्रामा का क्या राज समझा बाबा, उतना बड़ा से बाबा परमधाम से उतर के आ रहा है और कह रहा है बच्चे वीडियो बन रही तुम्हारी, रिकॉर्ड हो रहा है। ड्रामा का पाठ क्या पढ़ा कि जो भी इधर मैं बोल रहा हूं ये 5000 वर्ष पहले हो चुका है और आगे होगा, और जो अभी हो रहा है वो नथिंग न्यू। इसमें अब फोटोग्राफ और कुछ लेने की क्या जरूरत है वीडियो बनाने की, किसको नाम मान शान में किसको दिखाने की जरूरत है, किस चीज का दिखाना चाहते हो जी। फोटो भी लेते हो कि देखो दिखाने के लिए, बोलते हो नहीं फोटो हम दादी के साथ इसलिए ले लेते हैं ना, बाद में ना उमंग गुस्सा आ जाता है देख के, तो भ्रम है तुम्हारा, या तो ड्रामा का तुमको पाठ ही पक्का नहीं है। क्या वो सीन 5000 वर्ष पहले रिपीट नहीं होगा बाद में, उसके कैमरे का कभी डिलीट नहीं होगा, तुम्हारे कैमरे का हो जाएगा, मेमोरी फुल हो जाएगी। दादी टोली दे रही थी लाइन में, माता है फोटो ले रही थी, लाइन लंबी लगी है। अब दादी का टाइम वेस्ट करना, महान आत्माओं का टाइम वेस्ट करना, महान आत्माओं ने अगर टाइम दिया है तो तैयारी भी अच्छी चाहिए। और महान आत्माओं का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, ये वो है। तो निश्चय अटूट चाहिए। हैंग हो गया मोबाइल, मैं ये बोल रहा था कि माता जी सेल्फी ले रही थी, हैंग हो गया। अब लाइन लंबी है तो बाकी लोगों का संकल्प चलेगा ना, वो तो भाई ने उसका माता जी को मोबाइल छुड़ा के अलग कर दिया। तो माता जी बोलते हैं ऐसा करते हैं बीके, तो वह नहीं थी ना, इसलिए तो ठीक है, सबका अलग अलग वो है। लेकिन हर चीज समझ के और सोच के बोलना भी नहीं चाहिए, लेकिन अपना परिवार है खुशी होती है। अच्छा ठीक है, ओम शांत। पहले ही चीज हुई, पहले ही पार्ट हुआ, पॉइंट तो 50-60 थे लेकिन एक ही पॉइंट में टाइम हो गया। ओम शांति।
हम भी करें पूरे अरमान तुम्हारे।